फिर अल्लाह ताला कितना प्यारा अंदाज रख के कहते हैं अला तुकातिलू ना कौमन, या तुम ना लड़ोगे ऐसे लोगों से जो अपने अहद तोड़ते रहते हैं और जिन्होंने रसूल को मुल्क से निकाल देने का इरादा कर लिया था। और ज्यादती की इब्तदा करने वाले ही वही थे, यानी इनके खिलाफ तो इतने डिफरेंट केसेस हैं, क्या तुम इनको फिर खुला छोड़ दोगे? क्या तुम इनसे डरते हो? हाईलाइट कीजिएगा, क्या तुम इनसे डरते हो? अल्लाह को हैरत हो रही है, एक मुसलमान हो और अल्लाह से ज्यादा वो गैर मुस्लिम से डरे। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह इसका ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो। पूछिए, क्या मेरे दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा है या गैरों का? बाज लोग अल्लाह से ज्यादा सुपर पावर से डरते हैं, बाज लोग अल्लाह ताला से ज्यादा कई इंटेलिजेंसी से डरते हैं। उनको ये नहीं फिक्र के किरामन कातबीन हमारा एक एक लफ्ज नोट कर रहे हैं और कल क्यामत के दिन हमें उसके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन उनको ये बहुत पता है कि हमारी ईमेल्स चेक हो रही हैं, हमारे फोन चेक हो रहे हैं और हमने कहाँ क्या बोलना है। तो याद रखिए, लोगों का डर अल्लाह की इताअत का शौक दिल से निकाल देता है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम वाकई अल्लाह से डरो, तो अल्लाह ताला इस बात का ज्यादा हक रखता है कि वो तुम उससे डरो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपना डर दे दे और बाकी हर खौफ से बेनियाज कर दे। इनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से इनको सजा दिलवाएगा और इनको जलीलो ख्वार करेगा और इनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा और बहुत से मोमिनों के दिल ठंडे करेगा और इनके कुलूब की जलन मिटा देगा और जिसे चाहेगा तौबा की तौफीक भी देगा। मोमिन कब ठंडा होता है? काफिर को मरता देखकर, हाय हुरा लगाकर नहीं, मोमिन काफिर को इस्लाम में आता देख कर ठंडा होता है। सहाबा कराम की दिल की खुशी सबसे ज्यादा उस वक्त होती थी जब कोई इस्लाम कबूल करता था। तो यहां से आपको एक काफिर और एक मोमिन का फर्क पता चलता है कि वो दूसरों को इस्लाम में लाकर सीना ठंडा करता है। और यहां से ये बात भी पता चलती है कि मुसलमानों की जंगें इंतकामी जंगें नहीं थी। सहाबा कराम ने लोगों को मजा चुकाने के लिए जंग नहीं की, बल्कि वो सिर्फ उनके दिल से कुफर को निकालने के लिए ऐसे काम किए। अगर जब हुए तो अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और दाना है। और बात यह है कि हम हसीब तुमन तुतरकू, क्या तुमने ये समझ रखा है कि यहीं यूं ही छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अभी तो अल्लाह ताला ने देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसकी राह में जान फिशानी की और अल्लाह रसूल और मोमिनीन के सिवा किसी को जिगरी दोस्त नहीं बनाया। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। इसको हाईलाइट करें, क्या तुम्हें तुम्हारी जुबान के दावे पे छोड़ दिया जाए? क्या तुम्हारा सिर्फ ओरल टेस्ट लिया जाए? क्या तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ना किया जाए? क्या तुम्हें अल्लाह ताला अमली जिंदगी के पर्चों में नाजमाए? आप देखिए, कोई डॉक्टर सारी जिंदगी किताबें पढ़ता रहे, कभी भी उसको डॉक्टरी की डिग्री नहीं मिलेगी जब तक प्रैक्टिकली वो जाकर किसी मरीज को देखेगा नहीं। इसी तरह याद रखिए कि जब भी कोई मुसलमान जुबान से कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अमल के वक्त पे उसकी गवाही नहीं, तो आप वही स्टूडेंट समझ लीजिए कि ओरल टेस्ट में तो वो पास है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रिटन टेस्ट थेरी में वो फेल हो गया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर जन्नत तो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी। मां कानल मुशरिकीन यामुरु मसाजिद अल्लाह, यहां ये भी समझ लीजिए कि पूरे शिर्क और कुफर के बावजूद, बुत परस्ती के बावजूद, मुशरिकीन मक्का खाना काबा की खिदमत को एक ऑनर समझते थे, एजाज समझते थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर से ये रस्म चल रही थी कि कुछ कबीले खाना काबा में आने वाले हाजियों को पानी पिलाते, कोई सत्तू घोलते, कोई सफाई का काम करते, बहुत ऑनर थी। जिससे आज आप देखिए कि नाम नेहाद नेकियों को हम भी बहुत पसंद करते हैं, ग्लैमरस नेकियां जिसमें हम दिखा सके हमने ये किया, इतने हाफिज हैं, इतने आलिम हैं, लेकिन अमल में अकायद है। आज मुसलमान मुल्कों में जाके देखिए, जितने शिरके अट्टे हैं उसको देखकर तो मुशरिकीन मक्का से बदगुमानियां सारी खत्म हो जाती हैं। इसके बावजूद देखिए, मुसलमान हज करते हैं, उमरे करते हैं, सेम यही हालात है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब दिल में शिरक हो, पेट में हराम के लुक्मे हो, तो क्या फिर ये जाहिरदारी की नेकियां फायदा देती हैं? कभी भी नहीं देंगी। मां कानल मुशरिकीन, जहां हर उस शख्स को सोचिए जिसके अकायद में किसी भी किस्म का शिरक आ चुका। मुशरिकीन का ये काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों के मुजावर और खादिम बने, हालांकि अपने ऊपर वो खुद कुफर की शहादत दे रहे हैं। इनके तो सारे आमाल जाया हो गए। ये किस चीज की गवाही दे रहे थे? अपने शिर्क के गवाह थे। वो समझते थे कि चूंकि हम मस्जिद हराम को आबाद करते हैं, लेकिन असल में अपने शिर्क के खिलाफ वो गवाहियां दे रहे थे। जिस अकीदे को वो मान नहीं रहे, उसी के ऑपोजिट जगह जो अल्लाह ने अपने लिए बनाई उनको रखा। तो याद रखिए, जब लोग जाहरी नेकियों पे फख्र करें तो उस वक्त अल्लाह ताला को गुस्सा आता है। अमल की बात क्या है कि अपनी मर्जी का दीन हम नहीं बना सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जी मेरा जो दिल करता है मानूंगी, जो दिल करता है नहीं करता। जो अल्लाह ने कह दिया, दीन को अल्लाह की मर्जी से कबूल करना है। जाहिरी नेकियों के साथ बातनी नेकियों की अहमियत भी यहां से हमें पता चलती है इसलिए जब तक हम ये सारे काम नहीं करेंगे तब तक अल्लाह को हमारी इन नमाजों रोज़ों और उम्रों से कोई हाजत नहीं है कि हम ये काम करके अपने आप को कितना खुश करते हैं। फरमाया फिर कौन है जो मस्जिदों के खादिम है? फरमाया अल्लाह की मस्जिदों के आबाद करने वाले यानी मुजाविर और खादिम तो वही लोग हैं जो अल्लाह रोज़े आखिर को माने और नमाज कायम करें और ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें। लिखिए जरा अपने लिए, क्या मैं अल्लाह और रोज़े आखिरत को मानती हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मानते हैं। अल्लाह ताला उसमें बेहतरी कर दे। नमाज कायम करो, बिल्कुल पढ़ते तो हैं, अभी कायम नहीं हुई। याद रखिए, ये भी फ़र्क समझ लीजिए, ये बहुत अहम है हमारे मौजू के साथ। नमाज पढ़ना क्या है कि आपने मैंने अपनी अपनी नमाज पढ़ ली। नमाज कायम करना क्या है कि एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की जाए जहाँ नमाजों का असर दिखे। मस्जिदें हों, यूनिटी हो, आपस में लोग मिलें, दुख सुख सहें, वहाँ शादियाँ हों, ब्याह हों, एक दूसरे की बीमारियां दुख तकलीफें दूर की जाए। और किसी सोसाइटी में कितने लोग नमाजी हैं वो उनके हाल चाल, उनके लिबास पहनने उड़ने, उनके बिजनेस से, हर चीज से पता चले। आज के जब दौरे जवाल आता है तो लोग नमाजी रह जाते हैं लेकिन नमाजें कायम नहीं होती। आज भी आप देखिए, लोगों को मुंह से बताना पड़ता है वैसे मैं नमाज 5 वक्त पढ़ती हूँ। मुझे एक सिस्टर याद आ जाती है, एक मौके पर कहीं मिली थी और कहीं आपस में लोग बातें कर रहे होते, मैं सुन रही थी, तो वो बड़ी मॉड स्कॉट और अपने हाल उलिये से बहुत दिख रही थी ऐसी ना। तो इतने में नमाज का वक्त आया तो लोग उठे, तो वो बैठी हुई थी, तो लोगों ने सोचा ये नहीं पढ़ेंगी, तो वो बड़ी अदा से कहने की वैसे नमाज में पूरी पढ़ती, यानी उन्होंने खुद गवाही दे दी, शाहिदीन अला अनफुसिहिम, क्या मेरे हाल उलिये पे ना रहना, नमाजें मैं पूरी पढ़ती हूँ। वो कौन सी नमाज है जो आपको अल्लाह की मर्जी का ना बनाए? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक दिन में आप इतनी बार कहें फिर अल्लाह की बंदगी में ना आए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ करें और फिर आप अल्लाह से जिंदगी का स्टाइल ना मांगे, तो ये नमाजों के कायम ना होने की दलील है। और ज़कात दें, क्या मैं ज़कात देती हूँ? खुद से पूछें क्या मैंने ज़कात दे दी। देखिए, ज़कात के मामले में भी आज हमारे एक्सट्रीमिज्म है, चूंकि एक यूनिवर्सल रहे हमारे पास इस्लामिक हुकूमत नहीं दिखती। आमतौर पर क्या होगा, जब किसी जगह इस्लाम होगा आपकी मेरी ज़कात हुकूमत खुद लेगी। जैसे नॉन मुस्लिम मुल्कों में आप टैक्स का सिस्टम देखते हैं ना, नॉन मुस्लिम मुल्कों में कोई टैक्स नहीं है। आज भी देख लीजिए, सऊदी अरब में कोई टैक्स नहीं है, वहां चले किसी हद तक शरीयत नाफिज है। यूएई में कोई टैक्स नहीं है, दुबई फ्री पोर्ट है। क्यों? कि वहां निजाम क्या होता है कि हुकूमत ज़कात का माल ले लेती है और उसको अपनी हिसाब से बांटती है, जहां जहां देना। इसी सूरत में आगे हम पढ़ेंगे ज़कात किसको दी जा सकती है किसको नहीं। अब चूंकि ये ना रहा, और जब से बरेसगीर पाको हिंद में ये कमी आई कि इज्तमाही तौर पर यह काम टूटा, तो हमने ज़कात किसको दी? अपनी मासियों को। वो समझती बाजी कितनी फियाज है, पैसे तो 2000 थे तनख्वाह के, लेकिन ऊपर से हर महीने 1-2 हजार और दे देती। वो बड़ी खुश है कि बाजी दे, उसको क्या लगे आप ज़कात से दे रहे हैं क्या नहीं। और बाजी साहिबा अपने पूरे साल की ज़कात को तोड़ तोड़ कर सलामियों की सूरत में वो मासी को देती हैं। ये ज़कात का मसरफ नहीं है। ज़कात इज्तमाही कामों के लिए इस तरह से होती है कि तुम किसी कॉज को पूरा करो। अगर किसी की कोई कारोबार लगवाना है उसको कारोबार लगा दो, किसी जगह दीन का कोई काम है उसको पूरा कर लो। और आप देखते हैं यूनिटी में कितनी बरकत है, चाहे हम सबकी थोड़ी थोड़ी भी ज़कात हो, लेकिन वो सारी जब एक जगह जमा होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उससे कई चीज़ों को पूरा करवाता है। तो आज ज़कात के मामले में भी अफरात और तफरीत है। अगला सवाल खुद से कीजिए, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और से डरती हूँ? तो यकीन कीजिए, सच्चा मोमिन अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। और अल्लाह से जो नहीं डरता ना, वो हर एक से डरता है। अल्लाह ताला में हिदायत दे दे। फिर इससे एक और बात पता चला कि सिर्फ मस्जिद बनाना ही नेकी नहीं है, बल्कि इसको आबाद करना भी नेकी है। और जब मस्जिदों को आबाद करने वालों में ये 4 खूबियां होंगी तो उन मस्जिदों से स्पिरिचुअलिटी फूटेगी। वहाँ रो रो के लोगों को नहीं बुलाना पड़ेगा, खाने पका पका के नहीं बुलाना पड़ेगा, वहाँ प्लेइंग रोड बना के नहीं खिलाना पड़ेगा। दुख के साथ कहूंगी, पिछले 15-20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना किसी न किसी जगह मस्जिद से ताल्लुक है। क्यों भाई आप खाना खिला रही हैं, आपके अंदर तो हिम्मत नहीं? कहती क्या करें, खाना नहीं रखूंगी, लोग नमाज के लिए नहीं आएंगे। क्यों नहीं रखती हैं? क्योंकि बाकी सारी मस्जिदों में इफ्तारी हम नहीं रखेंगे तो इधर नहीं आएंगे। अच्छा, फिर होता क्या? ये मैं अपने घर की बात आपको बता रही हूँ। आप सारी असर से लेके इफ्तारी की तैयारियां, प्लेटें बनाते, खिलाते, खाना पकाते, जू ही आप मस्जिद में खाना सब रखते हैं, लोग एकदम 5 मिनट पहले आते हैं, भागे 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 आएंगे, जल्दी से प्लेटें पकड़ी, आधी खाई, आधी ट्रैश में फेंकी, मगरिब के बाद खाने की प्लेटें खोली, खाना लिया और उसके बाद एक एक करके चले गए। वल्लाही मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यहाँ बैठकर वही जो 15-20 लोग जिस जगह की मैं बात बता रही हूँ आम नमाजों में होते हैं, वही फिर वही तरावियों में रह जाते हैं। क्यों? हमने उधर जाना है, हमने उधर जाना है, उधर जाना है, हम घर पढ़ेंगे, हम चले जाएंगे, मस्जिदें फिर बेबाद है। कई दफ़ा इस पे बात हुई कि ये मस्जिद है, होटल नहीं है। हाँ, अगर आपके खिलाने से फायदा हो रहा है, लोग नमाज तक रहते हैं, शर्त होनी चाहिए मस्जिद में इफ्तारी कराने की। یہاں صرف وہ لوگ افطاری کریں گے جو روزے سے ہیں، روزہ رکھ کے بعد نماز پڑھیں گے، پھر مغرب عشاء تک بھی مسجد میں رہیں گے تاکہ مسجدیں آباد ہوں. تو یہ موٹیوز تو ہیں، میں اس کو برا نہیں کہہ رہی، یاد رکھیے، لیکن اس کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو آپ اگر یوتھ کو بلا رہے ہیں، کبھی یوتھ میلے، کبھی کچھ، کبھی ان کے لیے نائٹ کیمپس، کبھی کچھ کریے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو سچ کہوں، میں اپنے دل سے ہر سال ان آیتوں پہ یہ شاید جملہ بولتی ہوں کہ گھر والا گھر نہ ہو تو دل نہیں لگتا. جب ہماری مسجدوں میں اللہ کی روزات اور اللہ کی محبت اور وہ روحانیت نہیں ہوگی، وہاں ایک ایسا بندہ جو خود اللہ کی محبت میں چور ہے، جس کی بات سن کے دل پگھل جائے، لوگ میرے آپ کے ان چیزوں سے نہیں آئیں گے. اور یاد رکھیے، لوگ ہمیشہ حق کے ساتھ آتے ہیں. یہی حال آج دینی اداروں کا، لوگ کہتے اے سی لگا لو، اچھی کرسیاں رکھ لو، اچھے کارپیٹ رکھو، پھر آئیں گے. مانتی ہوں، لیکن یاد رکھیے، اچھی کرسیوں والوں کے گھروں میں آپ سے اچھی کرسیاں ہیں. آپ کا اے سی اگر اچھا چلتا ہے تو ان کا اس سے بھی اچھا چلتا ہے. آپ کہتے ہیں ان کو بٹھاؤ، ان کو کھلاؤ، لوگ ہمارے پروجیکٹر دیکھیں گے، ہمارے پاور پوائنٹس دیکھیں گے، ہماری ریسیپیز دیکھیں گے، چند دن دیکھیں گے، لوگ صرف وہیں آتے رہیں گے جہاں ان کو حق ملے گا. آپ ان کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر کے حق سنا دیں، آپ ان کو چپتی ہوئی جگہ پہ بٹھا دیں، وہ پھر بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے جو چیز ہمیں یہاں مل رہی ہے وہ کہیں نہیں مل رہی، اور جو چیز ہمیں مل رہی ہے وہ ہماری ضرورت ہے، وہ آئیں گے. ہاں، اللہ کی شان ہے، اللہ کا گھر، اللہ کے کام اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم بہترین کوشش کریں، ہم ان کے لیے نرم سے نرم، گرم سے گرم، اور ٹھنڈی سے ٹھنڈی جگہ رکھے. لیکن اگر حق نہیں ہوگا تو لوگ نہیں رہیں گے. آج یہی حال امت مسلمہ کا، اسپرچویلٹی نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے بھی بچے سیل فون سے کھیلتے ہیں، کین یو بلیو؟ مسجدوں میں اندر نماز درس ہو رہے ہیں اور وہ باہر کھیل رہے ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں. تو اچھی بات ہے بچوں کو لے کے جائیں، خوشی اتنی ہوتی ہے مسجدوں کو دیکھ کر، نمازیوں کو، بچوں کو، لیکن مائیں بیٹھی باتیں کرے اور بچے دوڑتے رہے، ساری مسجد کو آپ نے سر پہ اٹھایا ہوا، یہ کون سا دین ہے؟ ایسا تو میرا نہیں خیال ہم کسی کے گھر میں جائیں. آپ مجھے بتائیے، آپ اپنی کسی دوست کے گھر افطاری پہ جائیں اور آپ چند دوستیں بیٹھ کے باتیں کریں اور آپ کے بچے جو اس گھر کا حال کر دیں، کارپیٹ بدلیں، ان کی پردے ان کے پھاڑ دیں، اور ادھر سے ادھر، اور ایک طوفان بدتمیزی. چلیے، آپ کی دوست کے بھی بچے ہیں، وہ خوش ہو جائے گی کہ کوئی بات نہیں، بچے ایسے اللہ کے گھروں کے اندر آتے ہی، جب تک میں آپ کو دل سے کہوں گی کہ پریئنگ روم جو ہوتا ہے نا، جہاں نماز ہوتی ہے، اس میں آنے سے پہلے اگر آپ کی میری وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کسی کے پاؤش قسم کے ڈرائنگ روم میں جاتے ہوئے ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ مسجد آپ کے دل میں نہیں ہے. خود بھی نہ بولیں. آپ سب ماشاء اللہ آج کل کہیں نہ کہیں تو جاتی ہوں گی، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں، لیکن مسجد کے مین پریئنگ روم یا جہاں بھی عبادت کی جاتی ہے وہاں بیٹھ کر کیلو کال نہ کریں. وہ ماحول ہی بدل جاتا ہے افطاری کے بعد سے عشاء تک، اور تراویح میں جو وہاں شوروں میں گل مچتا ہے، وجہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں چل پوائنٹ، اب بچے کھیلیں گے نہیں ہے. 10-10, 20-20 لڑکیاں اگر آپ کی کہیں بیبی سٹنگ کر رہی ہیں اور وہ بچوں کو پھر کارٹون ہی بٹھا کے دکھا رہی ہیں، تو مسجد میں آنے کا فائدہ کیا تھا؟ کریں ایجوکیشن کو عام کریں. مسجد اور مدرسہ کبھی الگ نہیں ہوا. اگر آپ اگلے سال کر لیں انشاءاللہ، ابھی تو وقت ہے تھوڑا سا بھی، لیکن مسجدوں میں تراوی اور افطاری کے درمیان کے وقت کو بیسٹ یوز کریں، کورسز آفر کریں، چھوٹے بچوں کا سمر کیمپ رکھیں، میڈیم کا رکھیں، جو بچہ آئے وہ کھیل لے، سیکھے، وہ بدتمیزی نہ کرے. جوانوں کے یوتھ کیمپ رکھیے، ان کو آپ سورۃ توبہ ہی پڑھا دیں، سورۃ یوسف آگے آ رہی ہے، وہ یوتھ کی سورت ہے، وہ ان کو پڑھائیں، تاکہ اس ایک مہینے میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ آئیں، چلو بیٹا تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، اور آپ اپنی عبادت میں رہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ چینج آئے گا. ادروائز ہوتا پتا کہ رسپیکٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. آج مسجد کی وہ رسپیکٹ کہاں، جو ہم پھر کہوں گے کہ کسی کے اچھے گھر کی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گھروں کو آباد کرنا ہے تو پہلے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آباد کر کے دیکھو، اور فرمایا جو لوگ یہ کام کر لیں گے انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. اب یہ ایک کوشچن ہے جو میرے اور آپ سے بھی ہے، اور ہر اس سے جو اس طرح کا ہو، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے وال کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر، روزے آخر پر، اور اس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا بڑا درجہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، اور وہی کامیاب لوگ ہیں. کیا ملے گا ان کو؟ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. تم آ کے تو دیکھو اللہ تمہیں دیتا کہ اس سے بھی زیادہ کوئی قدردان ہے. دیکھیے، اس میں بہت گہرا نقطہ ہے، اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ہم اس طرح کی نیکیاں کرنا جس میں یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی لی، वो भी खाना काबा में खाने खिलाते थे, वो भी इफ्तारियां कराते होंगे, वो भी हाजी और उमरा करने वालों की बहुत खिदमत करते होंगे, लेकिन उनके कारोबार में हराम था, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी, उनके दिल ये उनके अकायद में शिर्क आ चुका था। जब इस किस्म के मामले होते हैं ना, तो अल्लाह कहते हैं कि फिर सॉरी आई कैंट एक्सेप्ट योर सदका। इस्लाम इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए, लेकिन अल्लाह ने बता दिया। तुम क्या सोचते हो कि तुम ये रौनक वाली बातें करके चंद किस्म की नेकियां कर करा के पैसा दिया तो पैसे का इजहार कर लो, अगर अल्लाह ने तुम्हें वक्त दिया जान दिए लगा लेते हो, अच्छी बात है ये काम करने चाहिए, लेकिन देखो कि अंदर कोई ऐसा सुराख तो नहीं है थैली में कि जो तुम्हारी नेकियों को जाया करे। तो असल जो दीन है ना, वो अल्लाह की बात को मानना है। अगर अल्लाह के किसी वाजे हुक्म पे कमी है, तो ना कि ये कि नेकी छोड़ दें कि अच्छा अब हम इफ्तारी नहीं कराते, अब हम उमरे पे नहीं जाते, अब हज नहीं करते, वो भी कीजिए, लेकिन उसको अपनी निजात का जरिया ना समझें जब तक कि यामन से लेकर अल्लाह की राह के अंदर घर बार छोड़ने की नौबत ना आ जाए। वही खुलासा इसका भी कि जाहरी नेकियों से ज्यादा दीन की असल रूह को लेकर आओ। और आप देखिए कि अल्लाह ताला ने ये सारी बातें करके मुझे और आपको क्या बता दिया कि अल्लाह के यहाँ एक अपना क्राइटेरियन है। याद रखिए क्वालिटी कंट्रोल का लफ्ज आजकल बहुत आम है। अच्छी कंपनीज क्या है? कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। आप कहीं से भी कोई फोन करें किसी सरकारी दफ्तर में या कभी आए, तो एक जुमला वो बोलते हैं कि योर कॉल इज बींग रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। कल आप कहीं भी जाते हैं, आप INS के ऑफिस जाते हैं, आप पासपोर्ट लेने जाते हैं, जो बातें आपकी वहां हो रही होती हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो क्या अल्लाह को इतना क्वालिटी कंट्रोल रखने का हक नहीं है? क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या सोचते हो, कोई जिंदगी में हराम तो नहीं है, वो तो नहीं है? ये नहीं कह दिया कि बस आमना बिल्ला ही, आज उम्मत मुस्लिमा का ये कलमिया है, आमना बिल्ला पे बात करो, दैट्स इट। व रोजे आखिर अल्लाह गफूर और रहीम है। जान निशानी वो हैं चंद मुजाहिदीन लगे, वो चंद हैं दीन वाले वो लगे, अल्लाह को ऐसा दीन नहीं पसंद। क्या मना के बाद सिर्फ तस्बीह लेकर नहीं बैठेंगे, बल्कि जाहदू, यहां से वो सिलसिला शुरू हो रहा है जो पूरी सूरत में चलेगा। और मुझे तो जिंदगी का यही खुलासा समझ आया, अल्लाह को जो नेकी हमसे मतलूब है वो आमन हुआ, हाजर हुआ, जाहदू। ये तीन नेकियों को अपनी तीन उंगलियों पर रट लीजिए इस पूरी सूरत के दौरान। पहले ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है, कमी बेशी हो सकती है, ईमान है तभी तो उम्मत मुस्लिमा में से है, लेकिन हाजरों पे बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं। हिजरत करना बहुत बड़ी बात है, आपको अपनी पसंद की चीज अल्लाह के लिए छोड़नी पड़े ये बड़ी तकलीफ है, आपको कहीं अपना स्टेटस छोड़ना पड़ता है, गेटअप छोड़ना पड़ता है। आप कहते हैं हिजाब पहनकर तो मैं कुछ और ही लगती हूँ, छोड़ दीजिए। अल्लाह कहते देख लो तुम स्टेटस से हिजरत नहीं करते तो फिर तुम्हारी मर्जी है। आपको अपना एक खास स्टाइल लगता है जीने का, हिजरत करनी पड़ेगी, गीतों से हिजरत करनी पड़ेगी, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी को करनी पड़ेगी, अल्लाह की रिक्वायरमेंट है। देखिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी, शायद दुनिया की मेरा अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, आप किस शहर की कोई होगी, किसी होगी, अगर एक ऐलान हो जाए हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज की तरफ से कि वो सिर्फ हिजाबी लड़कियों को दाखिला देंगे, फ्री होगा, बाकियों को पैसों का इसका फ्री है, मुझे बता सकते हैं कि उस वक्त क्या होगा? कितने लोग हैं जो हिजाब का एक टुकड़ा हो कहेंगे 10 हिजाब पहन लेंगे, हमें फ्री दाखिला दे दो। आप किसी मुल्क की नेशनैलिटी के साथ शर्त लगा दें कि दाढ़ी वाले लोगों को वो फ्री नेशनैलिटी दे देंगे, फिर देखिए लोगों की दाढ़ियां कहाँ उगती हैं। लेकिन असल बात पता क्या है, पुरानी चीज जो होती है ना वो फिर वो बाजवा चीथड़े बनती है। क्या आज हमारा ईमान पुराने कपड़े की तरह बुसीदा तो नहीं हो चुका? चूंकि बहुत मुस्लिम है, चूंकि इतने सालों से मुस्लिम है, फिर क्या ये करें? और हम सोचते हैं कि इन कामों के ना करने के साथ भी हम अल्लाह की नजरों में आएंगे। अल्लाह कहते नहीं, हाजरू के बाद जाहदू। कुछ मुसलमान आमनू पे रुके हुए हैं, कुछ हाजरू पे भी आ जाते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन सबसे मुश्किल रुख जो दीन का ना वो जाहदू का। जितनी बातें आजकल हो रही हैं आयतों में, और अक्सर आपको ये बताया जाता है कलम से जिहाद शुरू होता है, आज के दौर में कलम करो, फिर कल भी बात हुई कि ऐसे जिहाद नहीं होगा, डिक्लेयर करेगा तो होगा। मैं सोचती हूँ कि कई साथी शायद जो गलत बातें उड़ाने लगे वो कहेंगे देखें ये तो कह रहे हैं आज के दौर में जिहाद है ही नहीं। हालांकि अगर आप इस आयत पे आ जाएं और सारे सिनेरियो को सुन रहे हैं गौर से, तो आपको एक जुमला तो याद रहेगा कि जिंदगी का मकसद जिहाद है। मैं और आप एक बिग डील के लिए दुनिया में आए थे, अटमोस्ट एफर्ट अल्लाह के दीन को उठाने के लिए। बचाना पड़ेगा तलवार से बचाएंगे, फैलाना पड़ेगा कलम के जरिए फैलाएंगे, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी पड़ेंगी, जा जा के मिल के अच्छे रिलेशंस कायम करके मिटाएंगे, लेकिन जिहाद करेंगे। मेहनत के बगैर अल्लाह के दीन को लोगों की नजरों में लाते नहीं है। और ये जिहाद होता कैसे है? घर बैठे नहीं, भी अम्वाली है बात को सिर्फ, इसमें माल भी चाहिए और इसमें जाने भी लगेंगी। जान देते हो तो माल की फिक्र करो, माल देते हो तो जान की फिक्र करो, और अगर अल्लाह ने माल नहीं दिया तो अल्लाह का लाख शुक्र करो कि जान तो है, अल्लाह ये ले ले। जान में फिर अल्लाह आपकी गर्दन नहीं मांगता, वो तो कोई चंद गर्दनें कटी, आपका वक्त, आपका पसीना, आपके कदम मांगता है कि इस रास्ते में तुम पहुंचो, फिर मिलेगा। ये कर लो तो आजम दराजतन इंद अल्लाह, अल्लाह के यहाँ फिर बहुत अजीम दर्जे हैं, और उनका रब इनको रहमत और खुशखबरियां देता है, जन्नतों की, खुशनुदियों की। बताइए क्या ये मुश्किल है? हमेशा की ऐश, हमेशा रहोगे, और अल्लाह के पास खिदमात का सिला देने को बहुत कुछ है। इससे भी कोई बेस्ट बिडर होगा जो हमें अपनी तरफ बुलाए? अब आप कहेंगे इस वक्त तो दिल कर रहा है सब कुछ दे के बैठ जाए, यही दिल करता है ना इस वक्त, लेकिन रास्ते की कुछ रुकावटें। अब यहां से कुछ हर्डल्स का जिक्र है। कभी आपने बचपन में वो हर्डल रेस की होगी, वो पाँव में रास्ते में रुकावटें रखते हैं। कभी आपने वो चेयर, क्या म्यूजिकल चेयर कहते थे लोग उसको, लेकिन आप देखिए कि रुकावटों से गुजर के जो जाता है वो जीता है।